आप SBS उर्दू के साथ हैं।
गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। नौ मुंतखब सदर ने अपनी फतह की तकरीर में वादा किया कि वो अमरीकी कौम को मुतहद करेंगे। उन्होंने खास तौर पर अफ्रीकी नजाद अमेरिकन का उन पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। जो बाइडेन कह रहे हैं कि इस बात पर मुझे फख्र है कि इंतखाबी मैदान में उतरने वाली हमारी टीम में हर मकतबे फिक्र और हर कौम के नुमाइंदे शामिल हैं जो अमेरिका के कसीर कौमी माशरे की अक्कासी करते हैं। अमेरिका की पहली गैर सफेद फार्म खातून नायब सदर कैमेला हैरिस ने वोटर्स को बताया कि वो पहली खातून नायब सदर जरूर हैं मगर आखिरी नहीं।
ड्रीम विद एंबिशन, लीड विद कन्विक्शन।
मिस कैमेला कह रही हैं कि इस मुल्क के तमाम बच्चों को बताना चाहती हूं कि जिनसी तफरीक के बगैर आपको अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने का मसावी हक हासिल है। मिस हारिस के वालिद का ताल्लुक जमैका से और वालदा का हिंदुस्तान से ताल्लुक था। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की रियासत डेलावेयर में जश्न का सा समा है और डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सलीम अहमद सदर बाइडेन के घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते। उनका कहना था कि शहर में जो बाइडेन के हामियों का जश्न जारी है।
यहाँ पे विल्मिंगटन डेलावेयर में जश्न का माहौल है, बहुत ही पुर रौनक फिजा है। जो बाइडेन ने अपनी सारा जो इनका सियासी करियर है वो डेलावेयर में ही गुजारा। ये जब अब से 48 साल पहले सेनेटर इलेक्ट हुए थे डेलावेयर से, तो तब इनकी उम्र कुल 29 साल थी। स्टेट को उन्होंने ख़ास खराज अकीदत पेश किया और शुक्रिया अदा किया डेलावेयर के वोट डालने वालों का, जिन्होंने इन्हें पहले सेनेटर बनाया जिससे इनकी आगे मकबूलियत हुई। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल है और लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, फायरवर्क्स हुए हैं, आतिशबाजियाँ, हर किस्म के यहाँ पे सेलिब्रेशंस जारी हैं। आज की तकरीब में जो एक और तारीखी पहलू है वो ये है कि कैमेला हैरिस पहली खातून हैं जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, और वो उनका जो अपना बैकग्राउंड है, क्योंकि वो उनकी वालिदा हिंदुस्तान से थीं और वालिद उनके जमैका से थे, इस हवाले से वो इंडियन अमेरिकन भी हैं और अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं। ख्वातीन और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ पर बहुत फ़ख्र था।
ये थे डेलावेयर में मुकीम प्रोफेसर सलीम अहमद। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स के सदर फरहत जाफरी ने SBS उर्दू को बताया कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी इन अमरीकी इंतखाबात में खास दिलचस्पी ले रहे थे।
मेरा नाम फरहत जाफरी है, जो कि 30 सितंबर को जो भी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी में जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें हम कामयाबी हासिल करके मैं और मेरी टीम आए हैं, और अभी हमें सिर्फ एक महीना ही हुआ है। बात हम कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से जो कि अमेरिका में अभी हुए हैं, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं पूरी दुनिया में ही काफ़ी लोग उसको गहरी नज़र से देख रहे थे। और ट्रंप की जो पॉलिसी थी अगेंस्ट कोविड वो इतनी अच्छी नहीं थी, और इसकी वजह से फिर इस दफ़ा कोविड भी था तो मकान में लोग घरों में थे और ज़्यादा उनके पास टाइम था इसको मॉनिटर करने का। और ट्रंप के हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान और पाकिस्तान की कम्युनिटी के इतने अच्छे ख्यालात नहीं थे, शायद वो इतने अच्छे से पाकिस्तान की के केस को इतना अच्छा इंटरनेशनली लेके नहीं चल सके। जबकि जो बाइडेन जो हैं वो जब ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनका पाकिस्तान के हवाले से हमेशा अच्छी उन्होंने इजहार राय किया है, और कश्मीर के हवाले से भी उनके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के ऊपर उन्होंने सालिसी कराने की कई बार पेशकश की, पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको किस नज़र से देखती रही?
देखिए, उन्होंने जो कोशिश तो की है, लेकिन अब उसकी कोशिश उनकी कितनी पॉजिटिव थी, उसमें वो कितने कामयाब हुए, वो देखने वाली बात।
क्या जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की पॉलिसी पर किसी तरह के मजबूत असरात मुरतब होंगे?
बिल्कुल इस बात की उम्मीद है, क्योंकि जो बाइडेन ने हमेशा से कश्मीरियों के मौकफ की तायद, उन्होंने भारत से जो मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी राय और खुद मुख्तारी देने का मुतालबा किया है बार बार, और मोदी सरकार की जानिब से जब लास्ट ईयर कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की गई اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کی گئی، اس کی بھی انہوں نے شدید مخالفت کی تھی جو بائیڈن نے۔
نائب صدارت کی امیدوار کمیلا ہاریس، ان کی والدہ کا تعلق ہندوستان سے ہے اور والد ان کے جمیکن تھے، تو ان کے بارے میں یہاں رہنے والے پاکستانیوں کا کیا رد عمل ہے؟
جب امریکہ کے لیے کوئی نیا پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ آتا ہے، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے امید کہ ہم اچھائی کی امید ہی رکھتے ہیں، اور امید ابھی بھی اچھی ہے کہ جو پہلے نہیں ہو سکا وہ اب آگے ہو جائے گا، اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ، پازیٹیو تھنک کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس امید ٹیم آئی ہے امریکہ کے اندر، وہ پاکستانیوں کے لیے ان آسٹریلیا بھی، اور مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ایک ہوا کا ایک نیا جھونکا ہو۔
یہ تھے پاکستانی ایسوسیشن آف آسٹریلیا نیو ساؤتھ ویلز کے صدر فرحت جعفری۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے نو منتخب صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، بہت سالہ دوستی پر محیط ہے اور آنے والے دنوں میں یہ تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے، جس کی بنیاد نو منتخب صدر جو بائیڈن اور میری حکومت کی شراکت داری پر مبنی ہوگی۔ یہ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے الفاظ۔ نئے امریکی صدر کی ماحولیاتی پالیسی نے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ ڈیلیویئر یونیورسٹی کے ماحولیات کے پروفیسر سلیم علی کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اپنی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں کر پائے گا، مگر حکومت پر ماحولیاتی پالیسی کے اہداف مقرر کرنے کے لیے دباؤ یقیناً بڑھے گا۔
جو بائیڈن نے آج جو بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ پہلے دن ہی صدارت سنبھالتے ہوئے وہ امریکہ کو پیرس کلائمیٹ چینج اگریمنٹ میں پھر داخل کر دیں گے۔ یہ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماحولیاتی پالیسی ان کی الیکشن میں اس کا کتنا اہم کردار تھا، خاص طور پہ جو کم عمر ووٹرز ہیں ان پہ بہت ہی کلائمیٹ چینج کا اثر ہوا ہے، جو گریٹا تھنبرگ کا ایکٹیویزم تھا کلائمیٹ چینج پہ۔ اس حوالے سے آسٹریلیا کی سیاست پر بھی یوتھ ووٹرز ہیں، ان کا ضرور اس سے ان کی تھوڑی اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ البتہ جہاں تک آسٹریلین گورنمنٹ کی پالیسی کا سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ امریکہ کوئی آسٹریلیا کی کلائمیٹ چینج پالیسی پہ کوئی زیادہ اثر کر سکے گا، کیونکہ وہ ڈومیسٹک پالیسی ہے جو کہ آسٹریلیا کی کول پروڈکشن اور نیچرل گیس پروڈکشن، جو ان کی اکانومی کے لیے بہت اہم ہے، اس کی وجہ سے آگے بڑھائی گئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آسٹریلیا میں اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ایک موقع ضرور ملے گا۔
اور یہیں پر امریکہ کے صدارتی انتخابات کا ذکر ختم کرتے ہیں۔ اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ ایپل پوڈکاسٹ، گوگل پوڈکاسٹ یا اسپوٹیفائی، یا جہاں سے بھی آپ پوڈکاسٹ سن سکیں۔